नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज सोलन जिले के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में टेटनस और डिप्थीरिया टीके का शुभारंभ किया। ये टीका टेटनस और डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव करने में मददगार साबित होगा। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि इस स्वदेशी वैक्सीन का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की रक्षा और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने देश में चल रहे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम करार दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गर्भावस्था पंजीकरण के समय से ही लाभार्थियों की निगरानी यूविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है।
स्वास्थ्य विभाग कोई छोटे काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़े काम कर रहा है। और मैं जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करता हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो दुनिया का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है। ये टीकाकरण का कार्यक्रम कैसा है इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। 140 करोड़ के देश में हर साल हमारे 2 से 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हर साल 2.5 लाख के आसपास माताएं गर्भवती होती हैं। हम एक एक बच्चे को जिस दिन माता कंसीव करती है, गर्भवती होती है, उस दिन से लेकर हमारी आशा वर्कर हमारे यूविन पर जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें एंट्री करती है माँ का नाम और आने वाले बच्चे की कंसेप्शन की डेट और वहां से उसको ट्रैक करती है।
राज्य सरकार ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी को स्वीकृति दी है। इस नीति का उद्देश्य सशक्त सड़क बुनियादी अधोसंरचना के एक नए युग की शुरुआत करना है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये नीति मॉनसून में होने वाले भारी वर्षा के कारण सड़कों के नुकसान को कम करने में प्रभावी साबित होगी। नीति में पहाड़ी ढलानों की मजबूती पर भी विशेष बल दिया गया है और भूस्खलन संभावित व रिसाव क्षेत्रों में निवारण उपाय अनिवार्य किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया है। हमीरपुर में भाजपा प्रदेश शहरी प्रकोष्ठ की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर राज्य सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी AI और नई तकनीकों का विरोध कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस तकनीकी प्रगति में बाधा डालने का कार्य कर रही है। दूसरी ओर सांसद राजीव भारद्वाज ने AI समिट में युवा कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों से देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी होती है और सभी दलों को इस दिशा में एकजुट होकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे विश्व के राजनेता, पूरे विश्व के लोग AI समिट जो विश्व में अपनी तरह का एक अनोखा कार्यक्रम हो रहा था उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा घिनौना काम करना और वो भी शीर्षस्थ नेतृत्व की शह पर, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी जी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कल का जो घिनौना कार्य उन्होंने किया है ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा।
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अगले चरण में करीब 1200 किलोमीटर नई सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इन सड़क परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा DPR तैयार की जा रही है। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट के दौरान दी। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से विशेष रूप से शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डूडरा क्वार की सड़क परियोजनाओं का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया। उन्होंने क्षेत्र में सड़क परियोजना कार्यों के लिए विशेष छूट देने का आग्रह किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने आज स्पीति के काजा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्थानीय लोगों को सोलर पैनल वितरित किए। ये पहल केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सीमांत गांवों का समग्र विकास और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।